नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी।
इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में जो FCI का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण के लिए 25,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सत्यापन पुष्टि पर्ची से संबंधित दिशा निर्देशों में बदलाव की मांग वाली याचिका पर कहा है कि इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग का है। न्यायालय ने कहा कि ये तकनीकी मामला है और निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। याचिका में कहा गया था कि इन पर्चियों पर समय अंकित करने से पारदर्शिता, सत्यापन और ऑडिट प्रक्रिया में सुधार होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG 2026 पेपर लीक मामले में आज तीन और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने आज केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। जापानी संसद ने आज विदेशी खतरों से निपटने के लिए सूचना जुटाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने हेतु एक राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दे दी। परिषद की स्थापना जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के शासन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। IPL क्रिकेट के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स से मुकाबला करेगी, वहीं हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।